نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابھی آپ کے سامنے سورت جمعہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ رکھا جس کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو علم اور حکمت کے حامل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت سارے فتنے ہوں گے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آل فارس میں سے, فارسی کون ہوتے ہیں, فارس میں رہنے والے, فارسی بولنے والے, آل فارس میں کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ اگر دینی علوم سریا ستارے پر بھی ہوں گے تو وہ وہاں سے بھی ان کو ڈھونڈ لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی امام بخاری رحمہ اللہ کی صورت میں پوری ہوئی. ہم نے پچھلی نشست میں وہ حالات دیکھے تھے کہ کن حالات میں امام بخاری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا. آج ہم تھوڑی سی ان کے بارے میں بات کریں گے. پہلی بات ہے کہ امام بخاری کون تھے. لفظ امام کو دیکھ لیجئے تو وہ شخص جس کی پیروی کی جائے, جس کا ارادہ کیا جائے. ان کو امام المسلمین کہتے ہیں, مسلمانوں کے امام تھے. قدوۃ الموحدین کہتے ہیں, قدوہ کہتے ہیں اسوہ کو. اسوہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا طریقہ کار جس کے پیچھے چلا جائے. نبی کا اسوہ ہوتا ہے, عام لوگوں کا قدوہ ہوتا ہے. موحدین کہتے ہیں توحید والوں کو. مشکل نام نہ لکھیں, صرف آپ ان کی شخصیت کو جذب کریں. اللہ تعالیٰ نے توحید والوں کو جس شخص کے نقش قدم پہ چلوایا وہ امام بخاری تھے اور امیر المحدثین تھے. ان کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم تھا. اگر پورا نام لکھاؤں گی تو کافی لمبا بھی ہوگا لیکن انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی. یاد رکھیے کہ عرب کلچر میں یہ رواج تھا اور آج بھی ہے کہ لوگ کنیت رکھتے ہیں. کنیت دو طرح کی ہوتی تھی. ایک ہوتی ہے کہ کسی کا بچہ یا بچی, اور عموماً یہ پہلا بچہ ہوتا تھا, اس کے نام پر اس کو ابو فلاں یا ام فلاں کہا جاتا تھا. لیکن بعض لوگ جن کے بچے نہیں بھی ہوتے تھے, حتیٰ کہ شادی سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کنیت کے طور پہ نام رکھ لیتے تھے, جیسے ابو ہریرہ, بلیوں کے باپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا. ابو تراب حضرت علی کی کنیت تھی, مٹی میں سونے والے یا مٹی کے باپ. ایک موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, زمین پہ لیٹے ہوئے تھے, ان کے جسم پر مٹی پڑ گئی تھی, تو آپ نے پھر ان کو پیار سے بلایا تھا کہ یا ابا تراب, مٹی والے باپ. یعنی تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا ان کا حضرت فاطمہ سے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ کنیت یا تو کسی بچے کے نام پر ہوتی ہے یا ویسے ہی کسی کی کوئی خوبی کے نام پر ہوتی ہے. امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ کیوں تھی؟ کیونکہ ان کا بیٹا عبداللہ تھا, لہٰذا ان کے بیٹے کے نام پر کنیت تھی. ان کا اپنا نام محمد تھا, ان کے باپ کا نام اسماعیل تھا اور ان کے دادا کا نام ابراہیم تھا. آسان ہے یاد رکھنا, وہی ترتیب جو کہ نبوت میں موجود ہے. فارسی النسل تھے, یعنی بڑا بڑا کر کے لکھ لیجئے کہ امام بخاری عربی نہیں تھے. بعض دفعہ ہم لوگ جب عربوں کی خوبیاں پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں عربی زبان کی باریکیاں نظر آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہائے کبھی ہم عرب خاندان میں ہوتے. تو دیکھ لیجئے کہ اللہ نے جس شخص سے حدیث کا اتنا بڑا کام لیا وہ عربی نہیں تھے, فارسی النسل تھے. ان کی مادری زبان فارسی تھی, فارس کے رہنے والے تھے. ان کے داداؤں میں دادا مغیرہ, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور جس شخص کے ہاتھ پہ قبول کیا تھا وہ قبیلہ جوفا سے تھا. اب آپ اگر کبھی ان کا نام کہیں جا کے پڑھیں تو آپ کو ان کا پورا نام کیا دکھے گا, امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجہنی، اور آگے بخاری بھی لگتا ہے. تو اس پورے نام کو اگر ہم کھول کے دیکھ لیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے باپ جو تھے اسماعیل بہت بڑے محدث تھے. امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی دی ہے جو حضرت یوسف کو ملی تھی. کیا؟ اگر آپ حضرت یوسف کی کہانی سن چکے ہیں اور تفسیر میں پڑھ چکے ہیں اپنی کلاس میں، اور یقیناً آپ کو یاد ہوگی، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، نبی کا بیٹے کا نبی کا بیٹا نبی کا پوتا، تین نسلوں تک حضرت یوسف کے خاندان میں جس طرح نبوت تھی نا، اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ کی تین نسلوں میں اوپر محدثین تھے. ان کی خوبیوں میں پہلی خوبی کیا کہ یہ خود بھی محدث تھے، حدیث جمع کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے باپ بھی محدث تھے اور اس کے بعد ان کے دادا بھی محدث تھے. یہ ایک بہت بڑی ان کی خوبی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو جوفی کیوں کہتے ہیں؟ قبیلہ جوفا نام کا ایک تھا. ان کے داداؤں میں جو مغیرہ نام کے شخص تھے وہ اس قبیلے کے ایک شخص کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوا تھا. اب سمجھ لیجئے کہ اس دور میں عربوں میں قبائلی نظام تھا، ٹرائبل مینٹیلیٹی تھی. تو جب کوئی غیر عرب مسلمان ہوتا، سمجھیے گا، تو اس کو عربی کرنے کے لیے جس شخص کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوتا تھا نا، اس کے قبیلے سے اس کو نسبت دی جاتی تھی. سمجھ آئے نہ آئے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی جیسے بہت سارے عرب لوگ جو ہیں وہ اصل میں عرب نہیں ہیں، کسی نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو امام بخاری چونکہ عربی النسل نہیں تھے، لیکن قبیلہ جوفا سے ان کا تعلق کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ان کے بڑوں میں مغیرہ نام کے شخص نے قبیلہ جوفا کے شخص پر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، تو لہٰذا یہ ان میں رہے. ان کے باپ کو امام مالک رحمہ اللہ کی صحبت حاصل تھی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری کے جو والد تھے وہ امام مالک کے شاگرد تھے. اور یہ وہ دور تھا کہ جب حدیث لوگوں کے ذہنوں پہ چھائی ہوئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جہاں باقی نعمتیں دیں اس میں سے بہت زیادہ حافظے کی نعمت بھی عطا فرمائی. حافظ ابن حجر ایک محدث ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ان کا نسب ہے ان میں اوپر آتش پرست لوگ تھے. یعنی آپ یہ بھی لکھ لیں کہ امام بخاری کے فور فادرز آگ کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس دور میں فارس کے لوگ آتش پرست تھے. لہذا یہ بخارا میں آ کر جب آئے تو ان کو بخاری کہا گیا. یہ جو لفظ بخاری ہے نا، یہ ایسی جیسے لاہور میں رہنے والوں کو آج کے دور میں لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ لاہوری. اور سیالکوٹ میں رہنے والوں کو سیالکوٹی کہہ جاتے ہیں. تو لہٰذا بخارا میں جب آئے تو پھر ان کے سب لوگ وہیں آ گئے اور ان کا سب کچھ معاملہ وہی ہو گیا. ان کے باپ کا نام تو اسماعیل تھا، بہت بڑے بڑے محدثین میں سے تھے، اور ان کی کنیت ابو الحسن تھی. امام مالک کے خاص اسٹوڈنٹس میں سے تھے، اور اسی طرح سے ان کے شاگردوں کی بھی تعداد بہت لمبی ہے. اس وقت ہم بات نہیں کریں گے، لیکن یہ بات ضرور کریں گے کہ امام مالک کے باپ، کیونکہ آج ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ آج کیوں امام بخاری جیسے بچے نہیں ہیں اور آج کیوں اتنا نفع دینے والے لوگ چھپے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک کے جو باپ تھے نا، انتہائی پاک باس، مختار، خاص طور میں کھانے پینے کے معاملے میں، عقل حلال میں. ان کا اپنا قول ہے، ان کے ایک شاگرد احمد بن حفص کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت پہ میں حاضر تھا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کمائے ہوئے مال میں ایک درہم بھی مشتبہ چھوڑ کر نہیں جا رہا. سوچئے گا، یہ رزق حلال کا اثر ہوتا ہے جیسی اولادیں نصیب ہوتی ہیں. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک نیک باپ ملے. ماں کیسی تھی؟ انتہائی پاک باز، محتاط، اور ایسی عورت کہ جو اپنے دودھ کے ساتھ بچے کو اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت دینے والی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے پیدا ہونے کی ڈیٹ لکھ لیجئے، 13 شوال 194 ہجری. ڈیٹ سے زیادہ سن اہم ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ امام بخاری کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے بعد کا دور ہے. 194 हिजरा से क्या मुराद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत करने के 194 साल बाद, तो फिर आपकी वफात के कितने साल बाद हुए? 184 साल बाद, यानी तकरीबन पौने दो सदियां, तकरीबन दो सदियां ही बनती हैं, थोड़ा सा फर्क है, नमाज जुमा के बाद पैदा हुए। और अल्लाह ताला ने इनको ये ऑनर दिया कि मुहद्दिस बाप का मुहद्दिस बेटा पैदा हुआ, ये भी एक इनके लिए बहुत है। इनके वालिद अपने बेटे को ज्यादा दिन देख नहीं सके, बचपन ही में अभी चंद साल के थे इमाम बुखारी कि इनके बाप का इंतकाल हो गया। ये भी निस्बत है नबी सल्लम से। देखिए, नाम भी मोहम्मद है, आपका भी नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बाप भी उनके तो बाप पैदाइश से पहले ही फौत हो गए, लेकिन इनके पैदा जो है बचपन में फौत हो गए। और इसके बाद फिर इमाम की तरबियत की पूरी जिम्मेदारी इनकी माँ पर आ गई। नहायत खुदा रसीदा, इबादत गुजार और शब बेदार खातून थी, रातों को जागती थी। और माँ की तरबियत थी कि जिसका असर सारी जिंदगी में इमाम बुखारी के ऊपर हमें दिखता है। इनके बारे में किसी का बड़ा खूबसूरत जुमला है, कहते हैं कि आपने इल्म की गोद में परवरिश पाई। नाम मुश्किल लगते हैं इसलिए मैं स्किप करूंगी थोड़े से, और ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह रिटर्न में मिल जाती हैं अगर आप लेना चाहें तो बाद में। कहते हैं कि आपने इल्म की गोद में परवरिश पाई, यहां तक क्या बढ़े और इल्म की पिस्तान से शीर पाया, यानी इनको अपनी माँ के दूध से इल्म मिला, और इसी पर आपका फिताम यानी दूध छुड़ाने का जमाना खत्म हुआ। मुराद ये कि माँ बहुत नेक माँ थी। पहली चीज जो इनकी जिंदगी में एक बहुत अनयूजल दिखती है वो क्या है कि इमाम बुखारी अभी बच्चे ही थे, बिल्कुल बचपन में थे कि इनकी बसारत चली गई, ब्लाइंड हो गए। माँ के लिए पहली बेबगी का एक सदमा कम नहीं था, ऊपर से पता चला कि बच्चा भी नाबीना हो गया, हकीमों को दिखाया, इलाज नहीं हो सका। खैर, माँ नेक थी, यतीम बच्चे की हालत पर रात दिन रोती और दुआएं करती। एक रात क्या हुआ कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर ही रोते रोते और दुआ करते करते आपको नींद आ गई। ख्वाब में खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और बिशारत दी कि तुम्हारे रोने से और दुआ करने से अल्लाह पाक ने तुम्हारे बच्चे की बिनाई दुरुस्त कर दी है। सुबह हुई तो वाकई आपकी आंखें दुरुस्त थी और अल्लाह ने आपको फिर वो बिनाई अदा की कि तारीख कबीर जो इनकी बड़ी मारूफ किताब थी उसका पूरा मुसवदा आपने चांदनी रातों में तहरीर किया। उस दौर में कोई ये ट्यूबलाइट्स और बल्ब नहीं होते थे कि रात में भी दिन हो। अल्लाह ने इतनी बसारत दी, ये मां की दुआ होती है। और याद रखिए कि ये वो चीज है कि जिसको करने के बाद एक इंसान हकीकत में महसूस करता है। इस पे एक छोटी सी वीडियो भी है, बाद में अगर आपको दिखा सके तो दिखा देंगे, कि जिसमें इस पूरे किस्से को बयान किया गया। और आपको इसमें एक किस्सा पहले भी एक दिन सुनाया गया था, अगर आप में से कुछ लोगों ने सुना हो, कि कैसे एक बीमार बच्चे की माँ के पास अल्लाह एक न्यूरो सर्जन को ले आया और वो बच्चे को देखने लग गया। तो यहां से याद रखिए कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। आप अपने बच्चों के लिए अगर उनके बचपन से रोना शुरू कर दें तो उम्मीद है कि वो आपको बड़े होकर इतना न सताए। और वो बच्चे जिनको अब आप इमाम बुखारी की मां की तरह पाल नहीं सकी और वो जवान हो गए हैं, तो उसका इलाज भी रातों के आंसू है। आपने हजरत याकूब का अमल सूरत यूसुफ में पढ़ा कि सस्तगफिरू, अन करीब मैं दुआ करूंगा तेरे तुम लोगों के लिए रात को, यानी माँ बाप की दुआएं रातों में ज्यादा कबूल होती हैं, ये हकीकत है। आंखें मिल गईं, लेकिन आपको पता है कि इनकी जिंदगी की हिस्ट्री जब पढ़ के देखें तो इल्म का इतना शौक था कि इनके बारे में आता है कि धूप और गर्मी की शिद्दत में जब तलब इल्म के लिए सफर किया तो दोबारा इनकी बिनाई खत्म हो गई, फिर नबीना हो गए। खरासान पहुंचे तो वहां किसी हकीम को दिखाया गया, उसने कहा कि इनके सर के बाल साफ करा दो, और कुछ उनको इलाज बताया जैसे जड़ी बूटियों से। अल्लाह ताला ने इसके बाद इनको दोबारा बिनाई दे दी। 10 साल की उम्र में स्कूल की तालीम से फारिग हो चुके थे। आप कहते हैं 10 साल में तुम्हारा बच्चा अभी चौथी क्लास में होता शायद, 10 साल में मकतब की तालीम, जिसको स्कूल की तालीम में फारिग हो चुके थे, इतनी छोटी सी उम्र में अहादीसे नबवी याद करने का इतना शौक था कि हजारों की तादाद में हदीसें याद कर चुके थे। इल्म की महफिलों से इतनी मोहब्बत थी इनको, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि बुखारा शहर जो था उस वक्त में कुरान और हदीस का मरकज बन चुका था। हर जगह काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद होती थी। और इमाम बुखारी का मामूल क्या था, एक मरकज से उठते तो दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से, और अपने शहर के बड़े बड़े जो मराकज थे उनमें शरीक भी होते। और ना सिर्फ यह कि वहां से अहादीस लेते, बल्कि 11 साल की उम्र में एक ऐसा मामला हो गया, बाहर से एक बहुत बड़े आलिम, सुफियान बिन अबी जुबैर कहते हैं कि एक बहुत बड़े आलिम आए हुए थे और इमाम बुखारी ने उनकी गलती निकाली। उस दौर में उस्ताद के पास नोट्स होना ये उस्ताद की तौहीन होती थी। अपने हाफजे से और अपने जहनों से पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। किताबें खोल के जो पढ़ दे उसको कहते थे ये काहे का उस्ताद है। याद होगा आपने एक वाक्य सुना होगा कि कोई इमाम थे तो सफर में थे, तो डाकू उनकी किताब वापस आ रहे थे इल्म लेकर, तो डाकू आए तो चीजें लूट गए, तो उसमें उनके लिखी हुई किताबें भी थी। तो बाद में वो रोए कि हाय मेरी तो वो किताबें ले गए, तो जो दूसरे आलिम थे उनके सुनो ने कहा कि क्या तेरा इल्म किताबों में था, तो वो किताबें तो फिर चली ही जानी चाहिए थी, अगर तूने दिमाग में रखा होता तो तेरे साथ रहता। यानी ये वो दौर था। इमाम बुखारी के बारे में आज के दौर में जो लफ्ज बोलते हैं ना आप, वो बोल देती हूँ कि फोटो मेमोरी थी इनकी, फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक दफा कोई सफा पढ़ लेते तो इनको कभी ना भूलता। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह इनके बारे में कहते हैं इनको सिर्फ एक दफा सफ़े को देखना पड़ता था और आखिरी उम्र तक के लिए इनको वो याद हो जाता था। ये अल्लाह की देन होती है और आज भी है। आप ऐसी सर्चिस करके देख लीजिए, आज भी अल्लाह ने ऐसे लोगों को हाफ़िज़े दिए हैं कि अगर उनको आप एक दफा पूछे ना कि आज से 2 साल पहले सितंबर 4 तारीख को मौसम कैसा था, तो चंद सेकंड में बताते हैं कि हाँ मुझे याद है उस दिन बारिश हो रही थी। ऐसे लोग मौजूद हैं। एक छोटी सी वीडियो भी है मेरे फोन में, अगर किसी वक्त मौका हुआ तो आपको भी दिखा दूंगी कि वो किस तरह अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं कि J++++, और उसके बाद वो बच्चे उसका सही जवाब देते हैं। अब ये है कि नहीं, लेकिन ये मान लीजिए कि अल्लाह कुछ लोगों को हकीकत में ऐसा हादसा दे देता है कि अनबिलीवेबल। मैं खुद अपने फैमिलीज में ऐसे लोगों में से जानती हूँ कि उनकी, वो कहते हैं कि उनका भाई जो है ना वो सुबह उठ के अखबार नहीं पढ़ सकता। क्यों? एक नज़र अखबार पढ़ता उसको पूरी अखबार याद हो जाती है। जी मैं मिली भी, मैं जानती हूँ, हमारे अपने घरों के लोग हैं, इतना उनका हाफसा। आप कई दफ़ा डॉक्टर साकिर नाइक को वीडियो देखते होंगे, मैंने इतनी नहीं देखी लेकिन मैंने चंद क्लिप देखे हैं, तो वो ऐसे रेफरेंसेस और हवाले देते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल है। अफसोस की बात क्या है कि जिनको आज लोगों अल्लाह ताला ने बहुत हाफ़िज़ा दिया ना, वो उस हाफ़िज़े को या तो किसी सर्कस में जाकर या किसी शो में आकर मजीद दौलत कमाने और लोगों को फन और एंटरटेन करने का जरिया बनते हैं। इस्लाम इस लिहाज से बहुत ब्लेस्ड है कि अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी जैसे लोग दिए। और ये हकीकत में होता कब है? एक तो खुदा दाद भी होता है, दूसरा उस शख्स के साथ होता है जिसकी जिंदगी में बहुत कुछ याद करने को ना हो। फोकस्ड, जब घर में इतनी चीजें इर्द गिर्द होंगी तो आपकी तवज्जो तो कभी पलंग पे चली जाएगी, कभी लाइट पे चली जाएगी, कभी डेकोरेशन पीस पे चली जाएगी। आपने कभी अपने स्कूल कॉलेज के दौर में नहीं ये चीज आजमाई? छोटे कमरे में बंद जगह पे बैठ के जो प्लेन दीवार है वहां पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, और जहां सामने 20 चीजें और 10 किस्म के पेन ही रखे हो। आजकल तो हर चीज में इतनी वैरायटी है कि हम पढ़ने बैठते हैं तो 6 किस्म के हाईलाइटर सामने होते हैं, 10 किस्म के पेन होते हैं, 4 किस्म की कॉपियां होती हैं, इस्तेमाल इतना और अंदर कुछ भी नहीं। ये मेरी नोट्स हैं, ये मेरे लिखने के, ये वो है, ये तो जितनी सिंपलिसिटी आपकी जिंदगी में होती है, आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, उतना ज्यादा आपको अल्लाह ताला हाफ़िज़ा देता है। तो बहरहाल वो जो उस्ताद आए हुए थे उन्होंने एक हदीस बयान की। अब वो कोई उनकी गलती नहीं थी, एक मिसकॉन्सेप्शन हो सकती है, टंग स्लिप भी हो सकती है। तो जब उन्होंने हदीस पेश की तो इमाम बुखारी ने हाथ खड़ा करके अदब से कह दिया कि उस्तादे मोहतरम जाकर चेक कीजिएगा अपने नोट्स को, क्योंकि जो सनद आपने बयान किया, सनद समझ दे ना, इधर से बात शुरू हुई वहां तक, तो बीच में जितनों से सुनी ये सनद है, तो जो चेन थी उसमें नामुमकिन बात लग रही थी जो उस उस्ताद के मुंह से निकली, और वाकई जब बाद में जाकर उन्होंने चेक किया तो बात इमाम बुखारी की ठीक थी। ये पहला एक किस्म का मोजज़ा था। 70,000 हदीसें इनको टीन एज में जाती, 70,000 अहादीस के हाफिज थे ये। सोचिए जरा, हमें तो शायद 70 आयतें भी नहीं कुरान की आती होंगी जिसको हर वक्त पढ़ते हैं, जो हर वक्त हमारे घरों में होता है। किस तरह से अल्लाह ताला ने इनको ये सब कुछ दिया था। और इसके बाद आप देखिए कि फिर जो इल्म का शौक था, हर वक्त अपनी माँ से जिद करते थे कि मुझे मक्का भेज दें, मैं मक्का मदीना जाकर वहाँ के आइमा कराम से सीखना चाहता हूँ। लेकिन बेवा औरत थी और भी कई मजबूरियाँ थीं, इनको टालते रहे कि ये नहीं हो सकता, अभी नहीं, अभी नहीं, सब्र करो। इसके बाद क्या हुआ कि इमाम बुखारी रहमहुल्ला की माँ और इनके भाई इनको लेकर हज की नीयत से मक्का गए। और मक्का जाना उस दौर में ऐसे नहीं था जैसे आज है कि 2 हफ्ते का वीज़ा है या 2.5 हफ्ते का वीज़ा है और जहाज़ में गए और कटक से आपने उमरा या हज किया और वापस आ गए। एक दफ़ा जो मक्का मदीना पहुंच जाता था ना, फिर वापस आए ना ही उसकी मर्जी है, नो कंपल्शन। और मक्का मदीना उस दौर के हिसाब से आप ये कह लीजिए कि जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया से उलमाए कराम वहाँ आके बैठते थे। इवन चारों आइमाए कराम, इमाम मालिक, इमाम अहमद और दूसरे दोनों इमाम भी ये मक्का में बैठते थे। आज भी अगर आप पुरानी बिल्डिंग देखें जो अंदर की, तो वहाँ इमाम कराम के नाम लिखे हुए हैं। जहाँ इमाम शाफी बैठ के हलका देते थे वहाँ इमाम शाफी का नाम है, इमाम मालिक और इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफा। तो जब ये वहाँ हज की नीयत से गए, हज ख़त्म हुआ, उसके बाद माँ और भाई तैयार थे जाने को, इमाम बुखारी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। 16 साल की उम्र का जवान बच्चा, और जाने से पहले एक मारूफ किताब जिसको आप कह सकते हैं कि जिसमें तमाम हदीस बयान करने वालों के हालात ज़िंदगी थे, ये एक पूरा इल्म है, इसमें इल्म रिजाल कहते हैं इसको, यानी जिन लोगों ने हदीसें बयान की होती हैं उनके बारे में लिखना, ये जाने से पहले वो एक किताब पूरी लिख चुके थे, जिसको आज भी अगर आप खोल के भी देखें ना तो आप परेशान हो जाएं कि इसको खोलना किधर से है और इसको बंद कहाँ से करना है। ये अल्लाह ताला की शान होती है, लोगों से काम लेता है। तारीख कबीर उसका नाम है, लिख चुके थे। किस्सा मुख्तसर कि ये फिर मक्का से वापस नहीं आए। उन्होंने कहा आप जाइए, मैं इधर रहूँगा। क्या करते? उन्होंने कहा ठीक है, इल्म का शौक है। अब एक माँ ने यंग बच्चा जिसके ऊपर कई नजरें भी थी उनकी, हम तो ऐसे वक्त में अपने बच्चों के कैरियर की बातें करते हैं ना, लेकिन माँ ने उसके इल्म के शौक को सामने रखा और कहा कि आप ठीक है, आप जाइए। कहते हैं कि बुखारा के हर घर में इमाम बुखारी का चर्चा शुरू हो गया था इनकी इस छोटी सी उम्र में। लोग इनकी जहानत के कायल और इनके उस्ताद इनसे मोहब्बत करते थे, बल्कि उस्तादों में से एक बड़े उस्ताद का जुमला है इनके बारे में, कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ कि मेरी महफिल में मोहम्मद बैठा है तो मुझे बात भूलने लगती है। इतने स्ट्रॉन्ग कनिंग किस्म के शागिर्द थे। कहते हैं कि मैं हैरत का शिकार हो जाता हूँ। इनके बारे में किसी ने कहा कि एक दिन कुछ लोग एक बुजुर्ग के पास आए, उससे थोड़ी देर पहले मोहम्मद जो थे वो आके जा चुके थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो एक ऐसे जवान से मुलाकात करते जिनको 70,000 बल्कि इससे भी जायद हदीसें याद हैं। इतनी शान थी इनकी। अल्लाह अकबर। कहते ऐसा हाफ़िज़ अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। तो लिहाजा इमाम बुखारी की ज़िंदगी का दूसरा दौर देखते हैं। पहला बुखारा में, वहाँ धाक मच गई, सब कुछ कर दिया, अब हज के लिए आए, लेकिन असल में वो रहलत बन गई। किस चीज़ की? इल्म की। उस दौर में एक इस्तलाह बहुत आम बोली जाती थी, रहलत फरमाना। रहला कहते थे तलब इल्म के लिए सफ़र करना। अपने ही शहर से सिर्फ इल्म हासिल करने वाले को लोग ज़्यादा दीनदार, ज़्यादा इल्म वाला नहीं समझते थे। कहते थे इसको क्या पता है, इसने थोड़ा सा इल्म हासिल किया अपने शहर के सिर्फ मदरसों से। जो जितना दूर जाता था उतना वहां पे लेके आते हैं। और वही बात जो सूरह तौबा के आयत 122 में आती है कि फलाउ लनफरा मिन कुल्ली फिरकत मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन, कि क्यों नहीं हर गिरोह से एक छोटी जमात निकली और दूसरी जगह जाकर इल्म हासिल करती और वहां पे वो आते। हमारे असलाफ ने इसके ऊपर इतनी कोशिश की उन्होंने कि इल्म हासिल करने के लिए दूसरी जगह जाते थे। तो बहरहाल किस्सा मकसूद के मक्का मुकरमा में पूरे 2 साल रहे। वहां जाकर पूरा मक्का के जो वहां के उस वक्त के लोग थे उनसे इल्म हासिल कर लिया। पहले दौर में ये तरीका नहीं था तालीम का जो आज आम तौर पे वेस्ट में है ना, वेस्ट क्या पूरी दुनिया में है कि हमारे बच्चे 16 साल पढ़ते हैं फिर कहीं जाके बीए करते हैं, 18 साल पढ़ते हैं फिर कहीं मास्टर्स होता है। ये तरीका नहीं था। एक उस्ताद के पास जाते, मिसाल है कि ये किताब है मैथ की जी, ये मुझे पढ़ा दे। वो उस्ताद एक हफ्ते में पढ़ा दे, 10 दिन में पढ़ा दे, कुछ भी करवा दे, जिस तरह से भी हो। उसको क्या करते थे उसके बाद, कहते थे ओके रेडी, चलो जी पढ़ी, इसका टेस्ट दिया, आगे गए, ये आप मुझे साइंस पढ़ा दें। वो काम जो आज हमारे बच्चे 16-16 साल में नहीं कर पाते, उस दौर के बच्चे 1-2 साल में करके फारिग हो जाते थे। और यकीन कीजिए, इसको मैंने अपने इसी पिछले सफ़र में एक टीचर की ज़ुबान से भी वेरीफाई किया कि वो किसी स्कूल की टीचर है, तो कहती कि जो सिलेबस देते हैं ना मुझे स्कूल वाले, मैंने फील किया है कि बच्चे तो इससे बहुत ज़्यादा शार्प है। तो ऐसे टुक 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 पूरा साल टीचर है, वो छोटे छोटे लेसन देती रहती हैं। तो ये मुस्लिम टीचर हैं और अमेरिकन स्कूल में काम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो मुझे बच्चे लाइक करते हैं ना, उसकी वजह क्या है कि जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सिलेबस मिलता है ना स्कूल में, तो मैं वो शुरू के 3-4 महीनों में पूरा पढ़ा देती हूँ, और जो फिर एक्स्ट्रा वक्त मिलता है फिर मैं उनकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग करती हूँ, फिर मैं उनमें कोशिश करके उनको अच्छे अखलाक और इस्लामी बातें सिखाती हूँ। कि बच्चों का बच्चों की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, हकीकत है ये। जो हमने अपने बच्चों को अलीफ ए प्लस ए, और फिर उसकी भी ट्यूशन है, हैरत की बात है, 4थी क्लास का बच्चा और उसका इम्तिहान होने वाला होता है तो माएँ परेशान हुई होती हैं कि पता नहीं इसका कोई PhD का इम्तिहान है, माओं का रंग उड़ा होता है। बिल्कुल मिस अंडरस्टूड करते हैं हम अपने बच्चों को, अंडर एस्टिमेट किया हुआ। यकीन करें ये जो किताबें आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं ये इनके जहन को उभारती नहीं है बल्कि दबाती हैं। तो बहरहाल इनके बारे में ये सारा कुछ मौजूद था। 2 साल में मक्का में भी इल्म हासिल किया, फिर वहां से मदीना चले गए और अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मदीना में गुजारा, वहां इल्म सीखा, सिखाया, मस्जिद नबवी में रहे। तकरीबन कहते हैं कि 6 साल तक ये मुसलसल मक्का और मदीना में रहे। अब यहां से भी सब कुछ सीख लिया, जो उस्ताद थे वहां के दिया भी और लिया भी। तो वहां से निकले तो बसरा चले गए, वहां सीखा, उसके बाद कूफा गए, और उसके बाद आपको था कि पूरी जिंदगी इनकी जो थी तीसरा सफर के बाद, जब इनकी जिंदगी के समझे 50s शुरू हुए, यानी जिसको अब लेट 15s कह लें, तो उस वक्त फिर इनको अपने मुल्क की याद आई। इन्होंने कहा कि अब मैं वापस जाता हूँ, बुखारा वापस आए, और वहां रहने के बावजूद बुखारा में इनके इल्म की धूम थी। और ये वो वक्त था कि जबकि बगदाद में अब्बासी हुकूमत का तख्ता था और वो इल्म और फन की इतनी कदर करते थे कि बड़े बड़े उलमा कराम बगदाद में जमा होते थे और बार बार ये कहते हैं कि ये उनके पास जाते, वहां से सीखते। और एक उस्ताद जिनसे इनको फायदा लेने का मौका मिला वो इमाम अहमद बिन हम्बल है। बाप का उस्ताद कौन था, इमाम मालिक। बेटे का उस्ताद कौन है, इमाम अहमद रहमहुल्ला। उनके बाद कहते हैं कि जब ये उनसे इल्म हासिल करके जाने लगे तो इमाम अहमद ने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा कि आप लोगों को और बगदाद के इस जमाने को और यहाँ के उलूम व फनून के मराकिस को छोड़कर खरासान चले जाएंगे। यानी उनको दुख हो रहा था कि ये बच्चा यहाँ से क्यों जा रहा है। और बाकी जब बुखारा में गए तो इनको जो हालात हुए उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इमाम बुखारी का अपना कॉल सुन ली थी अपने बारे में, कहते हैं कि जब मेरी उम्र 18 साल की थी, 18 ईयर्स, तो मैंने किताब कुजाए सहाबा व ताबईन नामी लिखी, यानी सहाबा के डिसीजंस। या एक और बात नोट कीजिए कि इमाम बुखारी सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है आज भी कुछ लोग अपने मसलक और अपनी अपनी खास स्कूल ऑफ थॉट को साबित करने के लिए इमाम बुखारी की शख्सियत को पीछे करना चाहते हैं। वो कहते हैं इमाम बुखारी सिर्फ मुहद्दिस थे, आप इनसे बातें क्यों लेते हैं, उन्होंने तो बस बगैर सोचे समझे हदीसें जमा कर दी हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम है, हालांकि आप देखिए कि इमाम बुखारी ने 18 साल की उम्र में जो किताब लिखी थी वो सहाबा कराम के सारे फिकही इश्यूज पे थी। قضايا کہتے ہیں فیصلوں کو، جیسے آپ آج کی نارمل لا کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر کہتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں روضہ منورہ کے پاس بیٹھ کر تاریخ تصنیف کی، جسے میں چاندنی راتوں میں لکھا کرتا تھا. پھر میں نے شام اور مصر اور جزیرہ اور بغداد اور بصرہ کا سفر کیا، یعنی اتنی جگہ سفر کیا. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حاشد بن اسماعیل آپ کے ہاتھ ساتھی تھے، کہتے ہیں کہ آپ بصرہ میں ہمارے ساتھ درس میں حاضر ہوا کرتے تھے، محض سماعت فرماتے اور کچھ نہ لکھتے، یعنی صرف سنتے اور ان کو یاد ہو جاتا، لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. آخر 16 دن اسی طرح گزر گئے. ایک دن میں نے آپ کو نہ لکھنے پر ملامت کی، یہ اب آپ اپنے اوپر لیں کہ ایک تو بندہ سارا لکھ رہا ہے اور دوسرا صرف سن رہا ہے. کہتے 16 دن میں برداشت کرتا رہا کہ یہ صرف بیٹھ کے سنتا رہتا ہے، میں لکھتا ہوں. تو میں نے ان کو ملامت کی، تو آپ بولے کہ اس عرصے میں جو کچھ تم نے لکھا ہے اسے حاضر کرو، لے کے آؤ اپنے نوٹس. انہوں نے کہا میں نے لیا، مجھ سے ان سب کو بر زبان سن لو. چنانچہ 15,000 احادیث سے زیادہ تھی جن کو امام بخاری نے صرف اپنی یاداشت سے اس اہتمام سے سنایا کہ بہت سے مقامات پر ہم کو اپنی کتابت میں تصحیح کرنے کا موقع ملا. یعنی ان کی فوٹو میموری جو تھی اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے نوٹس ٹھیک کر دیے. سبحان اللہ، ان کے بارے میں لوگوں کے کمنٹس پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. ایک اور کمنٹ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام بخاری نے حدیث لکھی اس وقت جب کہ ان کی داڑھی مونچھ کے بال نہیں نکلے تھے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف نے 212 میں انتقال فرمایا، اس وقت امام بخاری 18 سال یا اس سے کم عمر کے تھے. امام بخاری درس میں شریک ہوتے لیکن احادیث کو قلم بند نہیں کرتے تھے. لوگوں کو اس پر حیرت ہوئی تو انہوں نے کہا وہ بخارا جا کر اپنی یاد سے ان سب احادیث کو ضبط کر لیں گے، جا کے بعد میں لکھ لوں گا تو مجھے یاد رہیں گی. سبحان اللہ. پھر اسی طرح انہوں نے مرو، ایک شہر ہے وہاں کا سفر کیا علم کے لیے، ہرات، نیشاپور، رے، بہت سارے دور دراز کے ملکوں میں سفر کیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میں جتنے اسلامی ممالک تھے سب میں گئے اور وہاں علم سیکھا اور دوسروں کو فائدہ دیا. آپ کو پتا ہے کہ ان کے استاد کتنے تھے؟ گیس کریں، 1,000 سے زائد. اور کہتے ہیں کہ میرے پاس جس قدر بھی احادیث اور سندیں اور روات کے جمیع احوال تھے مجھے محفوظ ہیں، یعنی جو سنا سب یاد بھی ہے. ہم تو پچھلے سال کے نوٹس بھول جاتے ہیں، آپ کو پرسوں کی بات آج پوچھ لوں کہتے ہیں مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے ان کو عزت بھی کتنی دی تھی. یوسف بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں تھا، امام المحدثین کی تشریف آوری کا اعلان کیا گیا، لوگ جوک در جوک آپ کے لائق شان استقبال کو جانے لگے جن میں بھی شامل تھا. امام بخاری عالم شباب میں تھے، ٹین ایج، بے حد حسین، فارس کے تھے. آپ کو پتا کہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ، گورے چٹے سیاری، یعنی چہرہ وائٹ سفید تھا اور بال کالے تھے داڑھی کے. آپ نے پہلے مسجد میں نماز ادا فرمائی، پھر لوگوں نے ان کو درس حدیث کے لیے گھیر لیا. آپ نے دوسرے روز کے لیے یہ درخواست منظور کر لی کہ آج نہیں کل. چنانچہ دوسرے دن بصرہ کے محدثین اور حفاظ جمع ہوئے. آپ نے فرمایا بصرہ والو، آج کی مجلس میں میں تم کو اہل بصرہ ہی کی روایت پیش کروں گا جو تمہارے ہاں نہیں ہے. پھر آپ نے وہی حدیث جو ادھر کے لوگوں نے لکھی بولی تھی زبانی ان کو املا کروا دی. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں آپ نے بہت ساری حدیثیں اپنی میموری سے جو لوگ بیٹھے تھے ان کو لکھا دی. یقین کیجئے کہ اگر آپ ان کی زندگی کی یہ صرف باتیں جان لینا تو حیران ہو جائے. یہ تو بھی صرف ان کا علمی باتیں نا، آگے آگے ہم ان کی باقی اور بھی باتیں پڑھتے جائیں گے. گھریلو زندگی کیسی تھی، پھر ان کا معیشت کا سامان کیا تھا، ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کا ورع کیا تھا. آج ہم سب اس پہ اب اتنی باتوں کے بعد اپنی باتیں کریں. آج ہم کیوں ایسے نہیں ہیں؟ ہم کو چھوڑ دیجئے، میں ایسی کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ ہمارا دور علم کا دور ہی نہیں ہے. آج بھی جو بچے اسکول کا بھی پڑھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اتنی چیز تو ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی. آپ 4 نمبر پوچھ لیجئے، فون کے 4 نمبر میموری سے یاد آج بہت تھوڑے لوگوں کو ہوں گے. اپنے جن کو سارا دن کرتے ہیں فون ان کے نمبرز نہیں یاد. वो कहते हैं ना कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात, आज यही हालात है हमारे भी, क्योंकि हम लोगों ने अपने दिमाग को काम इस्तेमाल करना छोड़ दिया। आप घरों में भी देखते हैं, जिस चीज़ को इस्तेमाल करना छोड़ेंगे आपकी वो चीज़ आया हो देगी। तो बिल्कुल इसी तरह होता है। हाँ, दिन ब दिन आप यकीन करें, हमारे पहले दौर के जो लोग थे वो अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें नहीं लेकर देते थे, जैसे कैलकुलेटर नहीं लेके देते थे। आज आप कैलकुलेटर लेके देना छोड़िए, आपकी घड़ी में भी कैलकुलेटर होगा। लोग खुद मेहनत करते थे। ये जितना हमने अपने बच्चों को पानी ज्यादा देना शुरू कर दिया ना, ये बेचारे उतने ही गलने शुरू हो गए। और हम कहते हैं हम इनकी लाड देख रहे हैं, हम इनको वक्त दे रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा उसका नतीजा। आज माओ की मेहनतों की तरीके और कोशिशें फर्क क्यों दिखती हैं? उसकी वजह क्या है कि आज हम वो बच्चों को दे ही नहीं पा रहे। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इनसे जो काम लेना था ना, उसके लिए फिर इतना सख्त मिजाज होना पड़ता है। चूँकि बाकी चीज़ें तो बाद में इनके साथ है, लेकिन इनकी ज़िंदगी की कहानी पूरी करने के लिए इनकी डेथ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज ही। इनकी वफ़ात कैसे हुई थी? बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ तो बात है, लेकिन इतना बड़ा इमाम, इतना फ़ायदेमंद, जिसने अपने आप को इतना खपाया, जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपने मुल्क बुखारा आने की नीयत की। बुखारा में उस वक़्त एक बहुत बड़े आलिम थे, जिसको आप कहेंगे जिनका चर्चा था, लोग उन्हीं के फतवे सुनते, उन्हीं से फ़ायदा उठाते थे। इमाम ज़ोहली के नाम पर उनको लोग जानते हैं। जब उन्होंने सुना कि इमाम बुखारी वापस आ रहे हैं, बहुत खुश हुए, इस्तकबाल किया, खुश हुए कि ये तो हमारी शहर की बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ का बच्चा वापस यहाँ पे आ रहा है। खैर, किस्सा मुख्तसर, अच्छा वेलकम दिया, इमाम बुखारी अपने शहर में आ गए। लेकिन कुछ दिन के बाद होने क्या लगा कि इमाम ज़ोहली के बहुत सारे स्टूडेंट्स, जिन्होंने इमाम बुखारी को एक बार सुना, तो वो एक एक करके उन्हीं की महफिल में बैठने लग गए। इस बात पे इमाम ज़ोहली, देखिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते, वो भी मुहद्दिस थे, अल्लाह ताला को पता, लेकिन एक बात यहाँ समझ लीजिएगा कि इंसान इंसान ही होता है, इन इल्म वालों में भी इंसानियत ही होती है, और इंसानों के अंदर ये फितरत में चीज़ होती है कि वो हसद करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है वो दूसरे डॉक्टर से हसद करेगा, एक अगर टीचर है तो वो दूसरे टीचर से हसद करता है, तो इल्म वालों का तो हसद ही बहुत बुरा है। अल्लाह जानता है कि उनकी नीयत क्या थी, हम उस पर कोई बात नहीं करते, और इंशाल्लाह जो भी इस तरह की कोशिशें थी उस पर अल्लाह ताला उनको भी अगर कोई कमी बेशी है तो उससे दरगुजर करे, हम दुआ भी करते हैं उनके लिए। लेकिन यह कि जब उन्होंने ये देखा कि लोग उधर जाने लग गए, एक वक्त ऐसा आ गया कि इमाम बुखारी जो बिल्कुल न्यू कमर थे, ठीक है बुखारा में थे तो अजनबी, क्योंकि सारी ज़िंदगी बाहर गुजरी है, उनकी महफिल दर्स इतनी बढ़ गई कि इमाम ज़ोहली की रौनक कम हो गई। और जो सबसे बड़ा झटका उनको लगा, उनके सबसे प्यारे स्टूडेंट इमाम मुस्लिम, वो इमाम बुखारी के शागिर्द बन गए। आपको पता है कि इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के शागिर्द थे, स्टूडेंट थे उनके। जब वो गए ना, तो बस उनके दिल में एक किस्म की गिरा बैठ गई। अब होने के लग गया था कि वो इस कोशिश में तक कि किसी तरह से इमाम बुखारी से लोगों की नजरें हटाएं। उस दौर में एक बहुत ही मारूफ फितना था, जिसको हम किसी और मौके पर अलग से देख सकते हैं, लेकिन इधर इसका इशारा ही काफ़ी है कि कुरान अल्लाह का कलाम है या मखलूक है। यानी फितना खलके कुरान का फितना था, बहुत ज़्यादा लोग इस फितने की शिकार थे। यानी जब लोग दीन में इधर उधर की बहसें शुरू कर देते हैं ना, तो फिर इस तरह के फितने होते हैं। लोग कहते थे कुरान अल्लाह का कलाम है कि नहीं, और सही अकीदा क्या है कि बल हुआ कलाम अल्लाह, कुरान में भी है कि कुरान अल्लाह ने बोल के दिया था, ये अल्लाह का कलाम है। जब इमाम बुखारी बुखारा में आए, तो कुछ लोग जो बड़े ही फिजी होते हैं, यानी मैं तो यही कहूँगी जैसे फिजी ड्रिंक होते हैं, ऐसे कुछ लोग भी फिजी होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को फितनों की नीयत से पूछते हैं। उनमें से किसी ने इमाम बुखारी से पूछा कि ये बताइए कि क्या कुरान, ये सीधा नहीं पूछा क्योंकि उनको पता था कि इमाम बुखारी सीधा कह देंगे कि ये कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। सवाल कुछ इस किस्म से किया डिप्लोमेटिकली कि जिसका खुलासा क्या था कि जो मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मेरी ये आवाज़ जो क्रिएट होती है, क्या ये मखलूक है या गैर मखलूक है? तो इमाम बुखारी ने कहा कि ये मखलूक है। बात समझ रहे हैं? वो कुरान जो अल्लाह ने दिया वो कलाम था, और जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे अंदर से बात निकल रही है, ये कलाम इतना एक किस्म का आप कह लीजिए कि ट्रिकी क्वेश्चन था कि इमाम बुखारी ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात को पकड़ कर ऐसी अफवाहें फैला दी कि इमाम जोहली को एक किस्म का मौका मिल गया और उन्होंने फौरन उस वक्त के गवर्नर, उस वक्त का जो गवर्नर था ना वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट अकीदा रखता था, वो कहता था कि जो है कुरान जो है ये मखलूक है। बहरहाल एक बहुत फितना था, इमाम बुखारी से लोगों ने फिर वो फायदा नहीं उठाया, दुश्मन हो गए। अब इमाम जोहली उस शहर में अपनी धाक बिठा चुके थे पिछले 10-20 साल में, इमाम बुखारी बेचारे आ जाके बैठे हैं। जूं ही इमाम बुखारी के बारे में इमाम जोहली ने जाके पब्लिक में बातें शुरू कर दी कि जी इमाम बुखारी का तो अकीदा ही ठीक नहीं है, बजाय इसके कि रियलिटी पे बात करें ये कह दिया कि देखे ये तो कुरान को मखलूक मानते हैं, हालांकि वो कुरान ईमान कुरान को मखलूक नहीं कह रहे थे, उस आवाज को मखलूक कह रहे थे, और क्या इस सवाल की कोई जरूरत थी। लेकिन पैदा करने वालों ने फितना कड़ा किया। अब जब लोगों ने इतने बड़े उस्ताद के मुंह से सुना कि इमाम बुखारी का अकीदा ठीक नहीं है, तो बेसोचे समझे जैसे लोग आते हैं वैसे चले भी जाते हैं, लोगों ने इमाम बुखारी को छोड़ना शुरू कर दिया। हत्ता के कहते हैं कि उन दिनों में ऐसा भी एक मौका आया कि इमाम बुखारी दर्स देने गए और एक स्टूडेंट भी उस क्लास में नहीं था, और अकेले हदीस सुना के आ गए। बहुत तकलीफ हुई, अब उनको टॉर्चर था, लोगों की जो ऐसे जो फिरकेबाजी हुई तो उसमें उनकी ख्वाहिश थी कि इमाम बुखारी जो है वो यहाँ से चले जाए, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि इनके आने से हमारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। इमाम बुखारी ये सब कुछ देख रहे थे, रमज़ान गुजरा, पूरे रमज़ान इन्होंने इंतज़ार किया कि मैं इस रमज़ान को तो ले लूँ। कहते हैं कि जब ईद की रात थी तो इन्होंने अपना सामान पैक किया ये सोच के कि मैं बुखारा छोड़ के जा रहा हूँ, और फिर इन्होंने सुबह के अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे फितनों में ना डाल, तू मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरी जिंदगी खैर की है। ये दुआ भी अल्लाह के नबी की, बल्कि किताबो दावात में हम खुद पढ़ेंगे सही बुखारी में, इन्होंने खुद ही ये हदीस पायल अप भी किया अपनी किताब में कि जब कोई बंदा ऐसे फितनों का शिकार हो जाए कि उसको अपनी जान और जिंदगी और ईमान का खतरा हो, फिर कह सकता है कि अल्लाह माहिनी मा कानतिल हयातु खैरली, कि मुझे अल्लाह बस तब तक जिंदा रखना जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है। तो सुबह उठ के इमाम बुखारी ने ये दुआ की कि अल्लाह बस तुझे पता है लेकिन मुझे दीन के फितनों में ना डालना, और साथ ही तैयारियां करें कि मैं शहर छोड़ा और जोहर से पहले इनका इंतकाल हो गया ईद के दिन। ही वो लोग हैं कि जिनके बारे में वाकई आता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तो याद रखिए वही जुमला जो एक दो दिन से आपके साथ शेयर कर रही हूं कि हक के रास्ते पर सबसे बड़ी सख्ती जो इंसानों पर आती है ना वो ये कि इंसान तन्हा रह जाता है। इतनी बड़ी शख्सियत जिनका नाम लेते हुए दिल मोहब्बत से भरता है, उस दौर के लोग जो खास उनके इर्द गिर्द रहने वाले थे उन्होंने उनके लिए फितने खड़े कर दिए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फुलां के खिलाफ लोग क्यों बोलते हैं और फुलां के मुतल्लिक ऐसी बातें क्यों करते हैं। और याद रखिए कि माजी की शख्सियात से ताल्लुक जोड़ना ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हाल की मौजूदा हाल समझते हैं ना प्रेजेंट मौजूदा दौर की शख्सियत से फायदा लेना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। जिन शख्सियात का आज हम नाम लेके ग्रोहों में बटे हुए हैं, अगर आज वो इस दुनिया में आके कहें मिसाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, कितने लोग पाकिस्तानी कल्चर के उनसे एसोसिएटेड हैं। आज अगर इमाम बुखारी लंदन शहर में आ जाए और कहें कि आओ एक साल का कोर्स कराता हूं, तो आप देखिए कि सारे हनफी कहलाने वाले 10% भी उनसे फायदा नहीं लेंगे। माजी के लोगों के गलों में हाथ डालने चूमने, मेरा वो उस्ताद था वो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी वो मेरी बड़ी आइडियल थी, ये बहुत ग्लैमरस होता है। आज के बंदे की बात मानना ये बहुत मुश्किल होता है, ये इंसानों की कमजोरी है। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमहुल्ला एक बहुत बड़ा विरसा छोड़ करके, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपको इनकी किताब से भी हम तारुफ रखेंगे, लेकिन इनकी जो शख्सियत के वो पहलू कि जिसको बहुत उजागर करने की जरूरत है तरबियत और तज़किया के लिए, हम इंशाल्लाह उसको लेंगे और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह आज हमें तू ऐसा वसफ दे ऐसी समझ दे कि हम भी इस दुनिया में रहते हुए कुछ करके जाएं। अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको जो नेमतें दी थी इन्होंने उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया था, लेकिन ये है कि उन सारी चीज़ों को लेकर उसके बाद वो अपने आप को लाते हैं, और वो स्पेशली जो इनकी वफात के अंदर जरिया बना फिर गवर्नर बना, थोड़ा सा स्किप हो गया, उसको बीच में डाल देती हूँ, कि जब इनकी वफ़ात का वक्त हुआ था, यानी सॉरी ये बुखारा में आए, तो जो वहाँ का गवर्नर था, कोई भी था, इन दोस्त से सब, तो उस गवर्नर ने ये ख्वाहिश की कि इमाम बुखारी इतना बड़ा उस्ताद आया हमारे शहर में, उसने अपने लोगों को भेजा कि जाओ उनकी महफिल को अटेंड करो और वहाँ जाकर उनसे कहो कि मेरे बच्चों को पढ़ाने मेरे महल में आए। उसका ख्याल क्या था कि इमाम बुखारी खुश हो जाएंगे कि माशाल्लाह बादशाह के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ शहजादों को। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने शाने बेनियाजी के साथ उसको कहा कि हदीस की क्लास इधर होती है, खलीफा से कहो कि अपने बच्चों को सबके साथ इधर भेजो, ये हदीस की इज्जत नहीं है कि मैं उसको पढ़ाने जाऊँ। इस बात को फिर वो गवर्नर ने गिरा बना लिया, पीछे से इमाम जोहली और इधर से गवर्नर, तो इन दोनों के फिर गठजोड़ से इमाम बुखारी के खिलाफ ये फितना है खलके खुद कुरान का जो था, ये इतना ज्यादा प्रवोक हुआ कि जिसको इंशाल्लाह हम अगली चीज़ों में देखेंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला हम सब के ऊपर अपनी रहमत करे और हमें और हमारी नस्लों को इल्म से मोहब्बत दे दे। और इनकी जो दुआ थी वो क्या थी कि अल्लाह मुझ पर ज़मीन तंग हो गई है अपनी कुशादगी के सब बावजूद, तो तुम मुझे अब इस ज़मीन से उठा ले। चलिए सुबहाना कल्ला हम अब हमदी का शदो अल्लाह इला अस्तफ़िर व तुबु इलैक।